ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संसद में पेश किए गए अध्यादेश पर अस्वीकार के प्रस्ताव को नियमावली के अनुसार निपटाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच हुई सहमति। सहारा बचत सहकारी के रकम ठगी मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को न्यायिक हिरासत में भेजने का चितवन जिला अदालत का आदेश। शैक्षिक और साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन का इतिहास रचने वाला साझा प्रकाशन बंद होने की कगार पर और गजा पर कब्जा करने और फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हमास ने किया अस्वीकार। अब समाचार विस्तार से। संसद में पेश किए गए अध्यादेश और उन अध्यादेशों पर लगाए गए अस्वीकृति प्रस्तावों के संबंध में प्रतिनिधि सभा नियमावली के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सहमत हो गए हैं। सभामुख देवराज घिमिरे द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित चर्चा में प्रमुख राजनीतिक दलों के सचेतकों ने नियमावली के अनुसार अध्यादेशों पर लगाए गए विभिन्न प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने बताया कि कल होने वाली संसदीय बैठक की कार्यसूची पर चर्चा हुई और कल की बैठक में प्रमुख विपक्षी दल के नेता का संबोधन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अध्यादेश और उन पर लगाए गए अस्वीकृति प्रस्तावों को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा और संसद में पेश किए गए सभी 6 अध्यादेश पारित होंगे। वहीं नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे ने बताया कि सभी अध्यादेशों पर चर्चा होगी और एक अध्यादेश पर लगाए गए अस्वीकृति प्रस्तावों को एक साथ निर्णय के लिए लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख सचेतक संतोष परियार ने बताया कि बैठक में राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन गई है और नियमानुसार आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार संसदीय प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख दल एकमत हो गए हैं। शैक्षणिक और साहित्यिक इतिहास रचने वाला साझा प्रकाशन अब बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। कर्मचारियों को लगभग 2.5 साल से वेतन नहीं मिला है और प्रकाशन के सभी कार्य प्राय ठप पड़े हैं। साझा प्रकाशन ने पाठ्य पुस्तकों की छपाई, बिक्री और वितरण के माध्यम से शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण अब इसके बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। चितवन जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सहारा बचत सहकारी संस्था के धन के दुरुपयोग के मामले में चल रही बहस पूरी न होने के कारण जिला अदालत के न्यायाधीश दयाराम ढकाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया। लामिछाने के खिलाफ सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था के धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था। अदालत के सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्मा के अनुसार लामिछाने को गुरुवार सुबह 10 बजे अदालत में उपस्थित होना है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने और अन्य के खिलाफ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण के मामले में दायर अभियोग पत्र की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था की बचत राशि के दुरुपयोग के मामले में रासोपा सभापति लामिछाने सहित 32 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया है। इसमें से लामिछाने सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला और 12 लोगों के खिलाफ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धिकरण का मामला दर्ज किया गया था। चितवन सरकारी वकील कार्यालय द्वारा दायर इस अभियोग को त्रुटिपूर्ण बताते हुए महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने इसकी जांच के लिए समिति गठित की है। सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण में शामिल 2 श्रमिक सुरखेत की भेरी नदी में लापता हो गए हैं। हमारे संवाददाता आकाश तारा बैक से मिली जानकारी के मुताबिक आज जिला बराहताल गांवपालिका वार्ड नंबर 4 कूटा स्थित भेरी नदी के ऊपर बनाए जा रहे सस्पेंशन ब्रिज में शामिल 2 कामगार भेरी नदी में लापता हो गए। लापता होने वालों में रुकुमपुर की सिसने गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के 24 वर्षीय अनिल घरती और 18 वर्षीय अर्जुन झाकरी मगर शामिल है। आज सुबह बराहताल गांवपालिका वार्ड नंबर 4 कूटा और पंचपुरी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 चामरी जोड़ने वाली निर्माणाधीन सस्पेंशन ब्रिज बांधने के दौरान 2 कामगार नदी में गिरने से लापता हो गए। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुरखेत के इंस्पेक्टर अजय डांगी ने दी। पुलिस लापता लोगों की तलाश कर रही है। प्रतिनिधि सभा की कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक संसाधन समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष से नमूने के तौर पर बंदरों की नसबंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रशासनिक कार्य करने हेतु सरकार को निर्देश दिए हैं। समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में बंदरों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने के कारण किसानों के विस्थापित होने की स्थिति को देखते हुए बंदरों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक उपकरण और भौतिक संरचना तैयार कर नीतिगत निरंतरता के साथ नसबंदी कार्यक्रम चलाने के लिए वन तथा वातावरण अर्थ और कृषि मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। समिति की आज हुई बैठक में बंदर नसबंदी कार्यक्रम से जुड़े कानूनी और नीतिगत मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर वन तथा वातावरण मंत्रालय को समिति में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में सांसदों ने देश के पहाड़ी इलाकों में बंदरों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने के कारण स्थानीय गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे लोगों की समस्या उठाई। साथ ही बंदरों के उचित प्रबंधन में देरी न करने, नसबंदी के लिए आवश्यक उपकरण और केन्द्र स्थापित करने और जंगलों में बंदरों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत के हिमाचल प्रदेश से बंदर नसबंदी संबंधी प्रशिक्षण लेकर लौटे पशु चिकित्सकों ने बताया कि बंदरों की नसबंदी संभव है। उन्होंने प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरणों से जुड़ी जानकारी समिति को दी। गौरतलब है कि भारत के हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बंदरों की नसबंदी कर उनकी संख्या नियंत्रित की जा रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चुनाव आयोग ने केवल संविधान संशोधन के माध्यम से चुनावी प्रणाली में संशोधन करने के लिए उपयुक्त होने की धारणा रखी है। राष्ट्रीय संघीय सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की आज की बैठक में निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने इस तरह की धारणा रखी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कैंसर नियंत्रण के लिए तंबाकू उत्पादों के आगे और पीछे चेतावनी संदेश अनिवार्य करने का निर्देश लागू किया है। 90% हिस्सों पर चेतावनी संदेश छापने के पिछले प्रावधान में संशोधन करते हुए मंत्रालय ने तंबाकू और सिगरेट उत्पादों के आगे और पीछे 100% हिस्सों में चेतावनी संदेश छापने की निर्देशिका लागू की है। मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि चेतावनी नोटिस के साथ धूम्रपान छोड़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में हर साल 37,000 लोग तंबाकू और सिगरेट के सेवन से अपनी जान गंवाते हैं। सरकार ने विदेशों से भी लेबर परमिट देना शुरू किया है। मस्कट स्थित नेपाली दूतावास ने पिछले शुक्रवार से ओमन के सलाला से ये सेवा शुरू की है। दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नेपाली राजदूत दोरनाथ अर्याल और वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्री ने संयुक्त रूप से उन नेपालियों को वर्क परमिट दिए जो विभिन्न माध्यमों से ओमान पहुंचे लेकिन उनके पास वर्क परमिट नहीं थे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा कानून में सुधार लाकर नीति तथा कार्यक्रम तैयारी के लिए अध्यादेश लाया है। आज भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के 5 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई और सम्मान किया गया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल केंद्रीय कार्यालय सिंह दरबार में आज आयोजित विदाई तथा सम्मान कार्यक्रम में इंजीनियरिंग महाशाखा के उपनिर्देशक पुरुषोत्तम मानांधर, प्राविधिक अधिकृत मोहन काफले, प्रादेशिक प्रसारण केंद्र गंडकी प्रदेश के प्राविधिक अधिकृत पुष्पराज बराल, टाइपिस्ट भरत सिलवाल और कार्यालय सहयोगी चूड़ामणि पांडे को विदाई तथा सम्मान किया गया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. महेंद्र विष्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान की सराहना की और बताया कि भविष्य में भी संस्था को उनकी आवश्यकता होगी। सार्वजनिक प्रसारण नेपाल के निमित्त प्रमुख प्रशासक के अधिकृत विष्णु राम न्यौपाने ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर संस्था को सहयोग करने का आग्रह किया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि रेडियो नेपाल के विकास को आगे बढ़ाने सेवा निर्मित कर्मचारियों की भूमिका अनुकरणीय है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गजा को विनाश और मौतों का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि गजा के लोग वहां केवल इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गजा को अपने कब्जे में लेकर उसे फिर से बनाना चाहते हैं और वहां लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गजा का पुनर्निर्माण होने तक वहां से लोगों को हटाकर किसी दूसरे अरब देश भेज देना चाहिए। ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ थे। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले नेतन्याहू पहले विदेशी नेता हैं। ट्रंप की इस योजना को हमास का संचालन कर रहे हमास ने खारिज कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल में इसराइल के दुश्मनों को और मजबूत किया है। ट्रंप की इस योजना को हमास पर शासन करने वाले हमास ने नकार दिया। उनका कहना है कि ट्रंप का ये प्रस्ताव इलाके में अराजकता और तनाव पैदा करने का फॉर्मूला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में पेश किए गए अध्यादेश पर अस्वीकार के प्रस्ताव को नियमावली के अनुसार निपटाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच हुई सहमति। सहारा बचत सहकारी के रकम ठगी मामले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी को न्यायिक हिरासत में भेजने का चितवन जिला अदालत का आदेश। शैक्षणिक और साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन का इतिहास रचने वाला साझा प्रकाशन बंद होने की कगार पर और गाजा पर कब्जा करने और फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हमास ने किया अस्वीकार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।